दुनिया में लोग क्या करते हैं, जॉब कर लो, कुछ साल जॉब करोगे फिर पेंशन लग जाएगी, अच्छा कुछ साल ये कर लो फिर उसके बाद प्रॉफिट आता रहेगा, शुरू में मेहनत कर लीजिए बाद में होगा। तो आज मैं और आप थोड़ी मेहनत और क्यों ना कर ले, कितना अच्छा लगेगा जब हमारी कब्रों में हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये जो ऑन गोइंग चैरिटी है ना, सदका जारिया है, बाकियातु सालियात, पीछे दो दफ़ा हम पढ़ कर आए हैं, आज दुनिया में ये है वो चीज़ जो आपको जगा देती है सोते से और आपको उठा देती है अगर आप थके हो। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या करेंगे, देखिए ना, रमज़ान है, ईद की तैयारियां हैं, और कपड़े बनाएं, दर्जियों पे जाएं, ज़रा सोचिए ना आप, रात दो दो तीन तीन बजे तक मुझे किसी ने कहा कि दुकानें खुली रहती हैं, आज तक ख्याल ही नहीं आया कि इधर कोई तारिक रोड भी है, इधर कोई बहादराबाद भी है, इधर सदर भी है। तो क्या ये अच्छा नहीं कि आप वो जो बेचारे जिन मुश्किलात में पड़कर रोज़े छोड़कर या रातों को बाहर बैठकर कमा रहे हैं, तीन तीन बजे घर में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, आपको अल्लाह उससे कितनी खूबसूरत चीज़ दे कि आपको किसी चीज़ की तो ख्याल ना जाए। तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा शोर से गुजारिए, बेकारियात में नहीं, और अगर कहीं स्टक हो जाए तो अपनी ज़ुबान से ही कोई नेकी कर लें। फिर इसके बाद एक और रिवायत है इब्ने माजा की, 3823, अबू हुरैरा इसके रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का हर अमल सवाब में बढ़ता है, यानी एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ती है। ये फ़र्क किस बात का है? नंबर एक, आपकी शाकिला। कुछ लोग वैसे ही अर्ली बर्ड्स होते हैं, फजर के बाद सोते ही नहीं हैं, पट पट बैठे हैं, अब सब सो रहे हैं और वो जाग रहे हैं, अब उनके लिए सुबह जागना कोई मुश्किल नहीं। और एक ऐसा बंदा है जो सारी ज़िंदगी सुबह फजर के बाद क्या, वो तो 9-10 बजे तक सोया, अब जब ये फजर के लिए उठेगा इसको अजर ज़्यादा मिलेगा। तबीयत नहीं होती, कुछ लोगों की फितरी तबीयत नेकी वाली होती है, कुछ की नहीं होती। फिर इसी तरह से हालात, किसी के घर के हालात बड़े मुवाफिक हैं, किसी के बड़े एडवर्स हैं। फिर इसी तरह नीयत, कुर्बानी, हिजरत, यानी अल्लाह रखता नहीं है। फिर फरमाया के सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो खालिस मेरे लिए होता है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो अल्लाह हमें नेकियों में इख़लास पैदा करने वाला बना दे। अब आगे थोड़ा सा मौजू नबी सल्लम के लिए कुछ हिदायात की तरफ पलटता है, आयत नंबर 91 से 93 में, इन नमा उमिर तू। अब देखिए कलमा हसर है, यानी अल्लाह के नबी सल्लम अपनी तरफ निस्बत करके क्या कहते हैं, बस मुझे तो इसी बात का हुक्म दिया गया है, क्या, अना अबुदा रब हाज़िहिल बल्दा, मैं तो इस शहर के रब की इबादत करूं। तो क्या पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायतनामा था उसमें क्या था, वन अतलुल कुरान, और मैं कुरान पढ़कर सुनाऊं। आइए ज़रा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हुक्म है। पहली बात, कुरान पढ़कर सुनाना, कुरान को मुसलसल पढ़ना, लोगों को इसकी दावत देना, इसकी तरफ रहनुमाई करना, और कुरान को हमेशा पढ़ना। तो कितने खूबसूरत पैगाम पे सूरत पूरी हुई जिसमें ये बता दिया कि जितना ज़्यादा कुरान तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा, सुकून भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा, और ख़ुशी भी आएगी, और प्रोडक्टिविटी भी आएगी। तो कुरान वो एक कह लीजिए कि खूबसूरत सी चीज़ है जो आपकी मेरी ज़िंदगी को सजा देती है। इसके बाद अब एक और नई खूबसूरत सी सूरत, सूरत कसस शुरू होने लगी। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि किस्से हैं इसमें। यह है हज़रत मूसा की सीरत तरतीब से, और थोड़ा कुछ और भी तذکرے हैं इसमें। 88 आयात है, शुरू की 6 आयात अगर देखें तो अल्लाह ताला मज़लूमों को गालिब कर देगा। और ये सारी सूरतें वही दौर है जिसमें अब नबी सल्लम और सहाबाए कराम पे जो जुल्म व सितम थे उससे अब निकलने के रास्ते बताए जा रहे हैं कि तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारा रब तुम्हें एक दिन ज़रूर गालिब करेगा। तौसीमीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये तो बड़ी रोशन किताब की, मुबीन किताब की आयतें हैं। हम आपके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी पढ़ते हैं, यानी आपको हम मूसा और फिरौन का किस्सा सुनाते हैं हक के साथ, और शर्त यह है कि लिकौमी युमिनून, यानी जो इस पर ईमान ले आए। बेशक फिरौन तो बहुत चढ़ाई करता था ज़मीन पे, यानी बहुत जालिम था, और उसने तो क्या कर दिया था वहाँ के रहने वालों को, शीजान, टुकड़े टुकड़े, डिवाइड एंड रूल, ये फिरौनी सिस्टम का स्लोगन है। लोगों को छोटे छोटे गिरोहों में डाल दो और हुकूमत कर दो, खुद अपनी मर्जियां करो, लोगों को छोटे छोटे मसाइल में डाल दो। और फिर वो क्या करते थे, उनको कमज़ोर जानते थे, यस्तदीफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, उनके गिरोह को बड़े कमज़ोर और हकीर बना दिया था इन्होंने। और कैसे था, क्या हाल था, युज़ब्बिहु अबनाहुम, उनके बेटों को ज़िबा करता और ज़िंदा छोड़ देता उनकी औरतों को। और था ही वो बड़ा फसादी, फसाद पाने वालों में। फिर हमने इरादा किया कि हम एहसान करें उस कौम पे जो बड़ी कमज़ोर जानी जा रही थी। ये कौन थे, बनी इसराइल, उस वक़्त के अच्छे मुसलमान थे। अल्लाह कहते जब हमने सोच लिया कि इनको फ़िरौन के चुंगुल से आज़ादी देनी है और हमने उनको आइमा बनाना है और हमने उनको वारिस बनाना है और हमने उनको ज़मीन पे गलबा देना है, तो क्या हुआ, व नूरिया फिरौन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, जिसको हमारे यहाँ मुहावरे में कहते हैं ना, वही हुआ जिसका डर था। बंदा जिस बात से घबराता है वही होता है। यानी फिरौन ने जिस बच्चे को ख़त्म करने के लिए इतने बच्चे मरवा दिए, अल्लाह ने अब वही बच्चा फिरौन के घर में लाना है। स्टोरी शुरू हो गई मूसा के बचपन की। उम्मे मूसा का किरदार है आयत 7 में, वाउहैना इला उम्मी मूसा, और हमने वही की उम्मे मूसा की तरफ कि दूध पिलाओ इसको, फिर जब तुझे खौफ महसूस हो इस पे तो इसको दरिया में डाल दे। वला तखाफी वला तहज़नी, देखिए इम्तिहान तो बहुत लोगों के लिए अल्लाह ने, अम्बिया के भी लिए, बीबी मरियम का भी लिया, लेकिन ये इम्तिहान दिल पे हाथ रखकर सोचिए, न्यू बॉर्न बेबी, दूध पीता बच्चा, शीरख्वार नौजायद, और कहा जा रहा है कि इसको दरिया में इस संदूक में डाल के छोड़ देना और गम भी ना करना, फिक्र भी ना करना। इन्ना रादूहु इलैक, हम इसको पलटाएंगे तेरी तरफ, और किस हाल में पलटाएंगे, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, कुछ अरसे बाद इसको रसूल बना देंगे। अल्लाह ने दुश्मन को मुहाफिज बना दिया। वादे कैसे अल्लाह अपने पूरे करता है, आयत 8 से 9 में देख लीजिए, फल तकहू, फिर उठा लिया। लुक्ता कहते हैं गिरी बड़ी चीज़ को, आज भी अहदीस में एक पूरा बाब है, बाब लुक्ता। तो लुक्ता यानी गिरी पड़ी चीज़ समझकर उठा लिया आले फिरौन ने, ताकि वो इनके लिए दुश्मन भी हो और इनके गम का भी जरिया हो। और फिरौन और हामान और उन दोनों के लश्कर खताकार थे। और कहने लगी फिरौन की बीवी, हज़रत आसिया का यहाँ किरदार है, कुर्रतु ऐनिल्ली, आँखों की ठंडक होगा मेरे लिए, वलक और तेरे लिए, ला तक्तुलू, मत कत्ल करो इसको, असाँ यनफाना, शायद ये हमें नफ़ा दे, औ नत्तखिज़हू वलदा, या हम इसको बेटा बना लें। वहुम ला यशरून, और वो जानते नहीं थे। यहाँ आपको एक और किरदार याद आ रहा है, सूरत यूसुफ, इसी से मिलते जुलते अल्फाज अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को कहे थे, और इधर बीवी शौहर को कह रही है। मूसा को देखकर क्या फिरौन के दिल में नहीं आई होगी कि शायद ये वही बच्चा हो, लेकिन याद रखिए अल्लाह कुफर के साथ मत मार देता है। और दूसरी बात है, जब अल्लाह ने कोई काम करना होता है आपके हाथों में से चीज़ निकल जाती है। अल्लाह अपना काम करने पे कादिर है। हज़रत आसिया की फरमाइश और सिफारिश के आगे फिरौन भी पर ना मार सका, दुम न दबा सका। क्या पता चला, शौहर अपनी बीवी की बात मानता है चाहे फिरौन ही हो, लेकिन बीवी हमेशा ये कहती हैं कि आप मेरी बात नहीं मानते। तो बहरहाल अल्लाह ने दुश्मन को मुहाफिज बना दिया। अब क्या हुआ, हज़रत मूसा की परवरिश दुश्मन के हाथों में हो रही है। तो आयत 10 से 13 देख लीजिए, वस बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा, और हो गया उम्मे मूसा का दिल फारिग। मुराद ये कि हर चीज़ से फारिग होकर सिर्फ मूसा का गम है। अब बच्चा दरिया में चला गया, माँ को क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है। उधर तो हमने सुन लिया कि मूसा सेफली रीच्ड पहुँच गए, दरिया से पार उतार लिए गए, लेकिन माँ का दिल उड़ा जा रहा है। इसके ऊपर है मुहावरा कि मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था। इनका आदत लतुब्दी भी करीब था कि इसको जाहिर कर देती, लौला रबत नाला कल्बिहा, हमने उसके दिल को ढारस बंधाई, ली तकू न मिनल मोमिनीन, ताकि वो हो जाए ईमान वालों में। अपने ऊपर लीजिए, बच्चा सबसे प्यारा होता है, और छोटा बच्चा, उसके आगे तो बंदा बड़े बच्चों को भी छोड़ दे, कितना माँ का दिल लेता है, वो तो माँ के दिल में रहता है। और अल्लाह ने मूसा की माँ को सुकून दिया। इधर अपने लिए अमल की बात रखिए, खुदा न खास्ता बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में बच्चे को चोट लग गई, बच्चा गिर गया, उसको कुछ हो गया, खून रखिए, अब देखिए कि एक सहाबिया थी उम्मे सलमा, उनकी कहानी भी आप सीरत में पढ़ते हैं कि उनका बच्चा बीमार था और कुछ दिन से बीमारी चल रही थी। शौहर काम पे गए तो बच्चा पीछे से फौत हो गया। माँ ने उसको नहलाया धुलाया, कफना कर उसको अंदर कमरे में लिटा दिया। थके हारे शौहर रात को आते हैं और कहते हैं कि बच्चा कैसा है, तो क्या कहती हैं, पहले से अच्छा है। यकीन था ना कि मासूम बच्चा था, वहाँ उसकी अच्छी मेहमानी है। खैर, खिलाया पिलाया, अल्लाह ने उनके लिए उस रात में बरकत भी दे दी, मतलब उसने अपने शौहर की हर ख्वाहिश पूरी कर दी। अगले दिन सुबह के करीब जाने से पहले बीवी ने कहा कि अगर कोई अमानत रखवा दे और जब लेने आए तो आप क्या करेंगे। कहा, खुशी से अदा करूँगा, वापस कर दूँगा। कहा, फिर बच्चे की अमानत अल्लाह को दे दें। अब ये घबरा गए कि घर में ये मामला हो रहा था और आपने मेरे साथ क्या किया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लम तक बात गई तो आपने कहा, आज की रात में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत रख दी। आप ज़रा सोचिए, वो भी तो माएँ थी ना, सिर्फ शौहर के लिए इतनी पुरसकून होने के लिए कि सारे दिन के थके हैं, अगर कोई गम की दुख की बात सुन लेंगे, खाएंगे नहीं सोएंगे नहीं। तो याद रखिए कि औरत के अंदर बहुत ठहरा होना चाहिए। चुलबुलापन, हर वक्त छोटी छोटी बात, इस पे डरना घरों को जहन्नुम बनाता है। और यहाँ अगर इशारा करें तो मर्दों की भी ये आदत होनी चाहिए। कुछ मर्द सिर्फ इतनी सी बात पे गुस्से में आ जाते हैं कि नमक ज़्यादा क्यों है। आप देखिए, खाना तो पका हुआ है ना, एक औरत ने इतनी गर्मी में खड़े होकर आपके लिए क्या कुछ नहीं बनाया, तो क्या आप सिर्फ छोटी सी गलती पे अपना भी मूड ख़राब करेंगे और घर का माहौल। तो यहाँ से अमल का नुक्ता लिखिए, रब्ते कल्ब, दिलों को बांधा रखा करें, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर एक चीज़ अच्छी ना लगे तो दूसरी देख लो। तो मूसा की माँ को अल्लाह ने बांध दिया। हाँ, कहने लगी, मूसा की बहन को ये नहीं कहा जा रहा कि अपनी बेटी को, उखती ही, कहने लगी उसकी बहन को, कुसी ही, उसके पीछे पीछे चलती जा, बस तू देखती रहे किनारे पे खड़ी होके कि उनको ना पता चल जाए। माँ थी ना, तो क्या पता चला कि माँ ने असबाब इख्तियार किए और बेटी को भेज दिया कि देखो ये बच्चा किधर जाता है। वहर्रमना लल मरा दिया मिन कब, हमने तो उसे पहले ही हराम कर दिया था मूसा पे, हर दूध पिलाने वाली को। क्या बात है, मूसा बचपन में आजमाए गए। बच्चे को आप चीज़ दें वो लेके खाने को तैयार है, आपका बच्चा बिस्किट दे कर रुकता है, आइसक्रीम दे के रुकता है, चॉकलेट दे के रुकता है। और फिर न्यूबॉर्न बेबी, मूसा ने कहा मैं तो नहीं दूध पीऊँगा। देखिए कैसे अल्लाह दिलों में डालता है चीज़ों को। और फिर क्या हुआ, वो बच्ची वहाँ पहुँच चुकी थी। फ़कालत हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुमको ना बताऊँ एक ऐसे घराने का पता कि जो इसकी किफ़ालत भी करेंगे और वो तुम्हारे बड़े खैरख्वाह भी होंगे। और फिर फरददना हुई ला उम्मी, फिर हमने लौटा दिया उसको उसकी माँ की तरफ। कई तकर्र इनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं, और वला ताहजन, और गम ना करो, क्योंकि जान लो कि बेशक अल्लाह का वादा हक है। क्या था अल्लाह का वादा, हम इसको पलटाएंगे, वला किन अक्सरहुम ला यालमून। इतना रकीक और हार्ड सॉफ्टनर है ये पोर्शन, इसके अंदर से बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। असल बात यह है कि एक इंसान अल्लाह के वादों पे यकीन तो करे। हदीस में आता है कि मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा जैसी है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी ले। जब मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरौन ने कहा कि चलो तुम इधर ही रहो। कहने की मैं तो नहीं रहती, मेरे तो बच्चे भी हैं। और कहा, उनको भी ले आओ। कहा, ना ना मैं नहीं आती, क्योंकि इनको पता था कि इसकी मजबूरी हूँ मैं। अच्छा, जो इस बच्चे को ले जाओ और हम उधर इसका खर्चा पानी भेजेंगे। वो जिसको आज की ज़बान में कहें कि बड़े बड़े ट्रॉलों पे सामान जाता था और मूसा के लिए जो जाता था उसके अंदर उसके भाई बहन भी खा लेते थे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है, आप देखिए, जो रब इस तरह के काम उनके साथ कर सकता है, आज हम भी तो हालात का रोना नहीं रोते रहते, ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, हम जो नहीं करते वो ये है कि अल्लाह के वादों पे एतबार नहीं करते। हम कहते हैं हमारे हाथों में चीज़ महफूज है, अल्लाह समंदरों और दरियाओं में से बचा लेता है। अल्लाह ने यूसुफ को कुएं में से बचा लिया, उसमें नहीं जाने दिया। इब्राहिम को आग से बचा लिया और मूसा को पानी से बचा लिया। क्या आपके मेरे बच्चों की वो हिफाजत नहीं करेगा। तो ज़रूरत है कि अल्लाह के वादों पर एतबार किया जाए। फिर आगे आयत 14 में, इल्म और हिकमत की अता, नबूवत की तमहीद, यानी अब मूसा की जवानी का किस्सा शुरू हो रहा है। वलम्मा बलगा अशुद्दा, और जब वो पहुंच गया अपनी जवानी को, अशुद्ध कहते हैं खूबसूरत उम्र, यानी शदीद, हर कुव्वत ही बहुत तेज़ होती है। और फिर हमने उसको इल्म भी दिया और हिकमत भी दी, और हम ऐसे मोहसिनों को जजा देते हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी हिकमतों से भरी थी, लेकिन तकदीर का लिखा सामने आता है। अल्लाह मुख्तलिफ असबाब पैदा करता है, कुछ बातों में डालकर आजमाता है ताकि आगे खैर दे। तो अब मूसा की आजमाइशों में से एक आजमाइश कि आपके हाथों कत्ले खता हो गया। आयत 15 से 19 में ये पूरा किस्सा आपने कई बार सुना पड़ा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हेल्पफुल इंसान थे। आप अभी इनका किरदार देख रही हैं, मदद करना चाहते थे वो, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। अब एक शख्स को बचाते बचाते मुक्का लगा, और मुक्का भी था ज़रबे कलीम के, वो कलीम की ज़र्ब के जो पत्थरों में से पानी निकलवा दे, दरियाओं में रास्ते बना दे। और मूसा बड़े चौड़े चकले थे, किसी को डिफेंड कर रहे थे और मूसा के मुक्के से दूसरा शख्स मर गया। अब जब ये सब हुआ, काल रब्बी नी ज़लम तो नफसी, कहने के अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने तो अपने नफ्स पे जुल्म कर लिया, फ़ग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर दे। फ़ग़फ़र लहू, कोई चीज़ बीच में है ही नहीं, रुकावट। अल्लाह कहते हमने बख्श दिया, क्योंकि वो है ही बख्शने वाला और मेहरबान है। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने इबरत ले ली, कल अल्लाह ताला आज के बाद मैं मुजरिमों की मदद नहीं करूँगा। और वो शहर से निकले, अब इतने में खबर फैल गई, वो जो शख्स कत्ल हुआ वो फिरौनी था, किबती कहते थे उस ख़ानदान को। फिरौन तक बात पहुँच गई, मुकदमा बन गया कि आपकी कौम के एक बंदे को एक मुसलमान ने मार दिया। आज भी आप देखते हैं ऐसी चीज़ बड़ी जल्दी फैलाई जाती है, खुदा न खास्ता किसी मुसलमान से कोई ऐसी गलती हो जाए, उसको पूरे मीडिया पे नशर करेंगे और दूसरों के पर्पसफुली किए हुए अमल भी छुपा लिए जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अब यहाँ से निकालना था। तो आगे आए 20 से 22 में, मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन में पनाह लेना है, यानी अब असल में ये हिजरत है। बिल्कुल नबी सल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के साथ रिलेट करें ना, तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम के कत्ल के इरादे पर खड़े थे लोग, और इधर मूसा से कत्ल हो गया। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना गए, अब ये मदीन जा रहे हैं। वजा रजुल मिन अक्सल मदीना थी यसा, एक शख्स दूर के शहर से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा है मूसा दरबार में आपके बारे में बातें हो रही हैं, वो आपको कत्ल करने वाले हैं, मैं बड़ा खैर खा हूँ आपका। बस मूसा वहाँ से डरते हुए निकले, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, या तरक्ब ऐसे जैसे बंदा पीछे पीछे देखता रहे कि कुछ हो तो नहीं रहा। हालांकि लफ्ज़ और भी आ सकते थे, लेकिन ये कुरान का खूबसूरत हुसन है। ये कभी डिटेल क्लासों में आप पढ़ें, किसी भी एक सूरत की इनडेप्थ स्टडी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि अरबी में एक एक लफ्ज़ के कई के मानी हैं। और बारिश के लिए 8-10 लफ्ज़ हैं, दिल के लिए 8-10 लफ्ज़ हैं, और कुरान ने वही इस्तेमाल किए जैसे करने थे। तो लफ्ज़ या तरक्ब बड़ा खूबसूरत है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना। और जैसे रकीब लफ्ज़ भी इसी से ही है। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम साथ साथ दुआएं कर रहे हैं, रब्बी नजीनी मिनल कौमे जालिमीन, ए मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात दे दे। फिर जब उनका रुख हुआ, फलम तवज्जहा, उर्दू में आप कहते हैं ना तवज्जो फरमाई, वही लफ्ज़ है, यानी जब उनका चेहरा हो गया तिलका मदयन। अब यहाँ तिलका क्यों आया, इला क्यों नहीं आया, हालांकि इला मदयन तरफ टूवर्ड्स, तो तिलका लफ्ज़ में क्यामत छुपी हुई है। ये सारी बातें जब आप पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। अभी तो हम बहुत मुख्तसर पढ़ रहे हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक एक सूरत को एक एक साल में भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे दे। क्या कहा, काल असा रब्बी यहदियनी सवा सबील, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखा दे सीधा, पता नहीं है मैं करूँ क्या, किधर जाऊँ। याद रखिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, सब राहें मसदूद हो गईं, कोई नक्शे पा नहीं, जाऊं तो किधर जाऊं, आऊं तो किधर आऊं। तो कभी ज़िंदगी में आप रास्ता भूले हैं, ये वो नहीं है कि आप लॉस्ट हो गए और नेविगेटर मिल नहीं रहा, लेकिन कभी ज़िंदगी में आप ऐसे रास्ते पे आ गए कि जहां आपको अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई चाहिए, तो यही मांगा करें। अब आपके इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है, कब पढ़ना है, अच्छा रास्ता भूले, अच्छा गाड़ी में भूले हैं, ट्रेन में भूल गए, अल्लाह के बंदो अमल को देखो,